इसका मतलब प्रभुपाद जी देते हैं तभी तो वो कह रहे हैं ना। हाँ, जैसे इस वर्धमान के ब्राह्मण को किसने बोला मांगने के लिए, शिवजी स्वयं कह रहे हैं सनातन गोस्वामी से मांग लेना, वहां तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी के पास वास्तव में अभाव नहीं है, लेकिन हम वास्तव में आज्ञाकारी भी तो बने, सच्चे अनुयायी तो बने। देखो, हम पिताजी से मांगने का तभी हक रखेंगे जब हम उनके आज्ञाकारी होंगे, तभी तो सामने हिम्मत कर पाएंगे ना मांगने की। जब आज्ञाकारी है ही नहीं तो हिम्मत कैसे करेंगे। और ध्यान दो, अगर आज्ञाकारी है तो पिताजी मांगने की नौबत ही नहीं आने देते, खुद ही दे देते। आज्ञाकारी नहीं तो 50 बार पूछते हैं किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है। ये सिद्धांत, इसलिए अगर हम सच्चे आज्ञाकारी बन जाएं तो प्रभुपाद जी के पास किस चीज का अभाव होगा। उन्होंने मात्र 11 वर्ष के अंदर 40 रुपए से 40 खरब रुपए भगवान ने उनको संपत्ति दे दी। आज भी प्रभुपाद जी की संपत्ति अपने आप प्रभुपाद जी के कारण ही प्रभुपाद जी यहां पर पहुंचती है, अन्यथा किसी से 1 रुपए मांग के देखो आप संसार में कितना कठिन। आज हम अपने ऊपर झांक करके देखे तो हम प्रभुपाद जी का ही तो खा रहे हैं। हम मार्केट में कहीं जाते हैं तो प्रभुपाद को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। यदि प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट ना करें तो कितना कठिन हो जाए जीवन निर्वाह करना। आज भी कौन दे रहा है, प्रभुपाद जी ही दे रहे हैं, वैष्णव ही दे रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कभी जरूरत पड़े तो प्रभुपाद जी से मांग लेने का, इसे वैष्णव कहते हैं। सुने न देखे भक्त भिखारी, सुने न देखे, सुने न देखे भक्त भिखारी, सुने न देखे जिनके कुंज बिहारी, जिनके कुंज बिहारी, जिनके कुंज बिहारी, जिनके कुंज बिहारी। भक्त लोग तो कभी सुने, अरे देखे तो गए नहीं, सुने भी नहीं कि भक्त भिखारी होता है। हमें भीख मांगना पड़ रहा है तो हम भिखारी हैं एक प्रकार से, सच्चे वैष्णव में। सच्चे भक्तों को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनकी इच्छा मात्र की आवश्यकता होती है, धन उनके पास उड़ के पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है, उड़ के पहुंच जाता है। फिर भागवत में क्यों कह दिया गया भक्तों को भिक्षु, भागवत में भक्तों को भिखारी क्यों कह दिया गया। बोले भागवत में भिक्षुक भक्ति वेदांती जो चैतन्य है, ये नारद जी से जब मिले तो उनका भिक्षुक करके वर्णन आता है शब्द। ऐसा क्यों, बोले भगवान भक्तों को भिक्षा का आदेश देते हैं। क्यों, सिर्फ अपने अहंकार का मर्दन करने के लिए। भिक्षा करना धर्म है एक साधक का, एक वैष्णव का। तो जो भिक्षा की जा रही है, जैसे मधुकरी आचार्यों ने किया, जैसे स्वयं भगवान कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, बाबा मांग के ले आया करो, थोड़ा भूखे मत रहा करो, ले आया करो मांग कर। एक तो इससे ब्रजवासियों का आपको प्रीति प्राप्त होगी, दूसरा ब्रजवासी जो भजन नहीं करते आप मांग के ले आओगे तो उनको भजन मिलेगा आपका, तो इससे उनका उद्धार होगा। जो ऐसे शुद्ध वैष्णव है जिनमें अहंकार लेश मात्र है ही नहीं, जो अहम के स्तर पर काम करते ही नहीं, अर्थात जो काया के स्तर पर है ही नहीं, माया काया ही है ना। कल हम बता रहे थे अहंकार से चालू होती है बीमारियां, जिनके अंदर अहंकार है ही नहीं, तो उनके अहंकार को चूर करने के लिए तो चलो कहा जाता है कि जिसके अंदर अहंकार है कि आप भिक्षा करो, लेकिन जिसके अंदर अहंकार है ही नहीं उसको क्यों कहा जाएगा भिक्षा करने के लिए। बोले उससे उस व्यक्ति का मंगल होगा जिस व्यक्ति के संपर्क में वो आएंगे और उनकी सेवा लगने से उस व्यक्ति का उद्धार होने लग जाए, वो भजन का प्रभाव मिले। दूसरा, अब हम जैसे लोग अहंकार के पिंड हैं, जब किसी से भिक्षा मांगेंगे तो हमारा अहंकार टूटता है, इसलिए भक्तों को क्या कहा गया, भिक्षुक कहा गया, मांगना चाहिए। गुरु जी को मैंने एक बार कहा कि ऐसे ऐसे मंदिर का काम चल रहा है लेकिन मैं किसी से मांगता नहीं, पैसे की बड़ी आवश्यकता। तो महाराज कहते हैं मांगता नहीं, तेरे को पता है मैं लोग क्या मांगू, कहा है बोले मर जाऊं मांगू नहीं, बोलो अपने तन के काज,
अपने तन के काज,
परमार्थ के कारणे
परमार्थ
मोहे न आवे लाज। ये लज्जा क्यों आ रही है मांगने में, बोले अहंकार है, इसलिए अपने लिए मत मांगना लेकिन परमार्थ के लिए, संसार में जीवों के कल्याण करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए बिना लज्जा के मांगना चाहिए। क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए, ये गुरुजनों के अद्भुत निर्देश होते हैं। एक को कह रहे हैं किसी से मत मांगना, जरूरत पड़े तो प्रभुपाद जी से मांग लेना, और एक को कह रहे हैं वो पहचान जाते हैं ना कि इसका अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहा है, इसलिए इस अहंकार को कम करना चाहिए। बोले अपने लिए नहीं मांगना चाहिए लेकिन परमार्थ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान ही तो परमार्थ है, लज्जा नहीं करनी चाहिए। लेकिन भैया हम तो अभी भी लज्जा का ये अनुभव करते हैं, हमसे तो मांगा नहीं जाता, और ये भगवान के ऊपर भरोसा कारण नहीं है इसका, इसका कारण है हमारा अहंकार है, अहंकार के कारण ही नहीं मांगते। और इस बात को वैष्णवों से तो क्या छुपा है, भगवान से क्या छुपा है, इसलिए उनको भी ऐसा लगता है कि अहंकारी कुछ ज्यादा ही है, वैसे मांगेगा नहीं तो इसकी आपूर्ति छोटी मोटी जो होती है वो कर ही देते हैं, वैसे ही अन्यथा वैसे ही छोड़ के भाग जाएगा इसलिए वो आपूर्ति करते रहते हैं, ये इनके इन प्रकार है। तो कभी भी अगर भक्त जीवन में निष्ठा पूर्वक यदि चले तो उसको किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता। ये वैष्णवों का संसार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर हम वैष्णवों के अनुगत्य जीवन जीने लग जाएं, सच्चे अनुयायी बन जाएं, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, उल्टा हमें संसार की विषय वस्तुएं जो कचरे के समान है वो तो प्राप्त हो ही जाएंगी, चिंतामणि स्वरूप भगवान का नाम भी प्राप्त होगा। और उनके कौन से कार्य रुके, फिर सब कार्य हो गए। लेकिन भैया एक बात बहुत गंभीरता से हमें विचार करनी होगी, ऐसी भक्ति हमें करनी पड़ेगी, ऐसी भक्ति करने की क्रिया को ही योग कहते हैं। क्या कहते हैं, योग। योग माने कौन सा योग, बोले भक्ति योग, कौन सा योग, भक्ति योग। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा तस्मात योगी भव अर्जुना, इसलिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ। अब जो भक्ति योग है इस पर अगर हमें चलना है तो इस पर हमें थोड़ा सा होश में चलना सीखना चाहिए। होश में चलने का अर्थ क्या है? आप कहीं किसी गंतव्य की ओर जा रहे हो, अब जैसे कृष्ण प्रेम में ये डूबे हुए हैं, हमें अगर इस स्तर तक पहुंचना है तो इसकी सीढ़ियां हैं। इसकी क्या है? सीढ़ियां हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चढ़ना होगा। ये नहीं माला पकड़ लिया और आज ही हम भी कृष्ण प्रेम में इनकी तरह डूब जाएंगे, नहीं डूबेंगे। समय लगता है इस लक्ष्य को पाने में। जैसे आपको यहां से देहरादून से जहां भी हम बैठे हुए हैं घंटा घर जाना है, तो आपको क्या लगेगा? समय लगेगा। जो समय लगेगा वो समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। उनका क्या साधन अपनाया जा रहा है, उनकी कितनी तीव्रता है, कितनी आकांक्षा है, उसके आधार पर वो कौन सा साधन अपनाते हैं, कितना उसे सीरियसली लेते हैं, उस पर निर्भर करता है ना। कोई सोच रहा है पहुंच जाएंगे शाम तक, क्या दिक्कत, तो कैसे चलेंगे? पैदल पैदल चलेंगे। कोई सोच रहा है नहीं नहीं पैदल, ऑटो से जाते। कोई सोच रहा है ऑटो से, ऑटो भी बड़ा धीरे चलेगा। नहीं नहीं किसी तेज चलने वाली टैक्सी को बुक करते। कोई सोच रहा है बुक करने में भी टाइम लगेगा, अपना ही टैक्सी उठा लेते। कोई सोच रहा है अपना टैक्सी उठाएंगे लेकिन आज मसूरी के लिए बहुत भीड़ है, जल्दी जाना है, तो क्या करें, बोले बाइक ले लेते। रस को चीरते हुए इधर उधर से साइड सूट लेकर फटाक से पहुंच। ये क्या है? हमारी पहुंचने की जो आकांक्षा है उसके आधार पर हमारी तीव्रता का अलग अलग परिचय प्राप्त होगा। लेकिन ये सभी उपाय उसी के द्वारा अपनाए जा सकते हैं जिसको रास्ता पता हो। जिसको रास्ता पता हो। अब जिसको रास्ता ही पता नहीं, वो कौन सा साधन अपनाएगा? रास्ते का पता होना कितना आवश्यक है। और रास्ते के पते के साथ साथ, जैसे मान लो आप बस में बैठ करके जा रहे हो, किसी का फोन कहां पहुंचे तो हम क्या बताते हैं? तुरंत खिड़की से देखते हैं, हाँ कहाँ पहुंचे, हाँ अभी हम इस चौक पर पहुंच गए, अब यहां से ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, बोले। तो खिड़की से बाहर निकल करके देखते हैं कि नहीं कहाँ पहुंचे भाई, कौन सी जगह आने वाली। पहली बार भी चल रहे हो तो किसी से फोन करके पूछते हैं ये रास्ता कैसा है, क्या क्या आएगा बीच में, कहाँ कहाँ रुकना होगा, कौन सी जगह बदलना होगा, कैसे कैसे पहुंचेंगे, तो सारा वो बताता है कि नहीं। फिर हम देखते हैं, अरे आ गया ये चीज तुझे बताया था उसने, तब हम विश्वस्त हो जाते हैं सही जा रहे। इसको क्या कहते हैं? उस रास्ते के लक्षण, उस रास्ते पर चलने वाले के लक्षण, जिससे पता चलता है हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। ऐसे ही क्या हम में से कोई भी व्यक्ति कभी इस बात का विचार करता है कि हम भक्ति योग के मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, कहाँ पहुंचे, कब तक पहुंच जाएंगे, कितना समय हमारे पास पहुंचने के लिए बचा है, कौन सा साधन हम लेकर के चल रहे हैं? कोई लक्षण है हमारे दिमाग में? कोई लक्षण नहीं, बस माला पकड़ लिया चल पड़े। जैसे माला पकड़ना ये एक लक्षण है, लेकिन और भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म लक्षण है जिनको जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे पहला लक्षण, अगर हम वास्तव में भक्ति योग के पथिक हैं, अगर हम इस रास्ते पर चलने के लिए उद्धत हैं, क्या है, चलने के लिए इच्छा रखते हैं, तो इसमें सबसे पहला लक्षण तो ये होगा कि भैया आप साधन तो कोई भी बाइक कार ऑटो जो अपनाना है अपना लेना, सबसे पहला काम बिस्तर छोड़ो। सबसे पहला काम बिस्तर छोड़ो। या फिर कोई ऐसा ओढ़न खटोला ले आओ, कोई ऐसी जादुई चटाई जादुई बिस्तर जिस पर सोते सोते ही वो उड़ करके पहुंचा दे हमें वहां। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। आप सोते सोते भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। अब विडंबना हम कलयुग के जीवों की कैसी है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य पात्रता, इतने मंद हैं बस, प्रभु निंद्रा में ही आपका मिलन हो रहा है। संसार में भी सोता हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता, तो सोता हुआ आदमी भगवान तक कैसे पहुंचेगा। ये सोना दो प्रकार का होता है, गोल्ड वाले सोने की बात नहीं हो रही है, नींद वाले सोने की बात हो रही है। ये सोना कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो हम आंखें बंद करके जो सोते हैं, एक तो ये सोना है जिसमें नए नए रिकॉर्ड कायम करते हैं। एक हमारे हॉस्टल में मेरा मित्र था, बिहार में गया से ही था, गया बड़ा विशेष स्थान है क्योंकि वहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पाए जाते हैं, पिंडदान आदि भी होता है वहां की, और भी कुछ विशेषताएं हैं वो व्यक्तिगत रूप से आपको बता सकते हैं अगर कोई हमारे संपर्क में आए, ऐसे ऑनलाइन नहीं बताई जा सकती, कुछ ज्यादा ही गंभीर विशेषताएं, शायद आप इस लक्षण से समझ जाओ तो अलग बात है। जो मेरे मित्र में था तो वो कहता है और एकदम रिकॉर्ड तोड़ सोता था वो, तो धीरे 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 करके उसका पीछे से बाली नहीं बचा, तो वो कहता है सुतल सुतल बलवा उड़ गया। क्योंकि तो सोते सोते तकिया पे रात दिन सर घिसना उसने, तो घिसते घिसते बोले बाली उड़ गया हमारे। फिर उसने वो स्टाइल चेंज कर दी, फिर ऐसे उल्टा करके सोने लग गया। सोचा बालों को बहुत टेंशन होता है लोगों को जिसकी शादी नहीं हुई होती ना, तब तक बालों का टेंशन बहुत सताता है, नए नए वो तेल लेकर के आता है, ऐसे भी करके बाल बचे रहे बस। फिर उसने उल्टा सोना चालू कर दिया तो फिर वो कहते हैं सुतल सुतल छतिया दुखन लग गई, छाती दुखने लग जाती है आदमी, होता ही ऐसा, धीरे धीरे शरीर दर्द करने लगता है कुछ ज्यादा ही सोने से। उदाहरण आप लोगों को कठिनाई हो रही है बोलने में, अरे उदाहरण आपके सामने मैं बैठा हूं, रात दिन मेरा जीवन सोने में ही जाता है बस। आप लोग तो तपस्वी लोग हैं इसलिए उदाहरण की बात आई तो सब मन में विचार करने लगे, कोई बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ उर्वा प्रभु ने थोड़ा सा बोला हल्का सा, मैं हूं, जिससे आवाज भी पहचान में ना आए कि किसने बोला है। तो जो व्यक्ति आंखों से सोने में लगा हुआ है उसकी भी संभावना नहीं है इस मार्ग पर चलने की, और जो व्यक्ति विषयों में सोया हुआ है, इसमें विषयों में सोया हुआ है, उसकी भी लक्षण नहीं है, योग्यता नहीं है कि वो इस मार्ग पर चल सके। ये दो प्रकार का सोना है। कोई व्यक्ति विषयों का त्याग कर दिया, मंदिर में आ गया, संसार का सब त्याग कर दिया और मंदिर में एकदम बढ़िया बिस्तर लगा करके दिन में भी रात्रि बना लेता है वो, सब पर्दे पर्दे दरवाजा वगैरह बंद करके और बढ़िया माहौल बना करके बस इतना एक्सपर्ट होते हैं लोग। इसलिए भगवान ने गीता में सबसे पहले ये बताया, या निशा सर्वभूतानाम, बोलो इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को, भैया जो सब लोग सो रहे हैं जिस रात्रि में, तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति उस समय में जागता है जिस समय में संसार सोता है। या निशा सर्वभूतानाम, जो रात्रि होती है संसार के लोगों के लिए, उस समय में संयमी व्यक्ति जागता है, अर्थात योगी व्यक्ति जागता, वही योगी कहलाता है, अदरवाइज वो योगी नहीं है। ये तो रात्रि की बात हो रही है, मोटी मोटी जो रात्रि अगर हम विचार करें, जिस रात में लोग सोते हैं भोगी लोग, उस समय संयमी जागता है। तो क्या सारी रात जाग लें? जब संसार के लोग रात को सोते हैं, उस समय में एक योगी को क्या करना चाहिए? सारी रात जागना चाहिए। श्लोक के अनुसार तो यही सिद्ध हो रहा है ना। बोले हाँ, सच में जागना चाहिए, सच में जागना चाहिए। हमारे सारे आचार्य प्राय सारी रात जाग जाते थे, क्योंकि रात्रि का समय बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ होता है, और उसमें जो भजन का आनंद आता है वो अद्भुत होता है। कोई सोचे जागते होंगे पहले, अरे अभी भी जागते हैं। मैंने मेरे गुरुजी के साथ अनुभव किया, सारी रात जाग करके भजन करते हुए देखा, सारी रात, एक दिन नहीं, निरंतर महीने महीने, पूरा चतुर्मास सारी रात जाग जाग कर, कौन कर सकता है? ये सिद्ध योगी कहलाते हैं, इन्हें गुड़ाकेश कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़ाकेश, जिन्होंने योग के मार्ग पर चलते 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 गुड़ा माने नींद, उसको जीत लिया। अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है, जो नींद को क्या करते हैं, जीत, नींद को कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता। नींद एक क्या है? बोले नींद वास्तव में इतनी आवश्यक वस्तु है कि उसमें जाने से ही आदमी ताकती है। नींद पर्याप्त लेने से जीव संसार जीवित है, अन्यथा व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? जबकि इनमें खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, नींद को भगवान का ही स्वरूप बताया गया। जब आदमी नींद में चला जाता है तो उसकी भगवान से मिलन होता है, एक प्रकार से सुप्त अवस्था का मिलन है, उसमें भगवान से उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। अन्यथा घोर भोगी व्यक्ति भी अगर उसे नींद ना मिले तो पागल हो जाता है, पागल हो जाएगा वो। चाहे कितना भी उसको ऐश्वर्य कमाने की इच्छा है, अगर उसको नींद नहीं दी जाए तो नहीं जीवित रह सकता। नींद लेना बहुत आवश्यक। बोले जब साक्षात रूप से भगवान जागृति में मिल रहे हैं, तो फिर उसको तो सारी एनर्जी वहां से मिल ही रही है ना, उसको सुप्त अवस्था में एनर्जी लेने की क्या आवश्यकता है? इसलिए एक योगी व्यक्ति नींद को क्या कर लेता है, जीत लेता है। लेकिन जो सुप्त अवस्था में नींद का आश्रय लेता है, वो अंततः मृत्यु को भी प्राप्त होता है। नींद निशानी मौत की, अंततः मौत उसको चुपचाप आकर के घेर लेती है, पता ही नहीं चलता क्यों सो रहा है ना। इसलिए भक्त अभ्यास करते करते, इस मार्ग पर चलने वाला भक्त जो है, धीरे 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 इतना सशक्त बन जाता है, 24 घंटे में 24 घंटे वो जागता ही रहता है। हरिदास ठाकुर इसके उदाहरण थे, 22 घंटे तो भजन करते थे, बाकी समय थोड़ा सा प्रसाद लेना, नहाना धोना, अन्य नित्य क्रियाएं करना, मात्र कितनी देर, तो 2 घंटे में आदमी कितनी नींद ले सकता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जब हम नींद की पूरी तरह से अभी शिकार है ना, जड़ है, तो हम क्या कहते हैं, कोई उठाए ना हमें, 12 घंटे सोने के बाद भी कोई उठाए ना, 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं, 5 मिनट बस। और इन वैष्णवों के साथ साथ क्या होता है, अब सो भी जाओ 5 मिनट बस, इनके साथ ऐसा होता है। महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था कई बार, तो हम शिष्य लोग सभी लोग महाराज से निवेदन किए, महाराज आप थोड़ा रेस्ट लिया कीजिए ना। बोले हाँ लेता हूं। तो माला को साथ में लेते ही थोड़ी देर ऐसे लेट जाते हो, माला साथ में ही है और साथ में लेके लेट गए। तो महाराज को कहा, महाराज आप माला के टेंशन में आप सो भी नहीं पाते, माला उठा करके साइड में रख देते हैं, अब आप 2-3 घंटे सो जाइए। महाराज क्या कहते पता है, भले आदमी हो, अब तुम लोग मेरी माला को ही छुड़वा दोगे, तुम कैसे लोग हो, मेरी माला ही छुड़वा रहे हो, बताओ। उनको ऐसे लग रहे हैं ये यमदूत लोग हैं और ये माला छुड़वाने तो ले हुए, वो भी 2-3 घंटे सोने के लिए हार्डली। महाराज आप 12 बजे 1 बजे थोड़ा सा लेटते हैं, तो इस माला को रख के लेट जाया कीजिए, भले आदमी तो तुम माला भी छुड़वा दोगे, और हमें कोई माला पकड़वाता है तो वो भी हमें भला आदमी नहीं नजर आता, दुश्मन नजर आता, अरे यार ये यमदूत कहां से आ गया। एक वैष्णव को कौन यमदूत नजर आ रहा है और एक संसार में डूबे हुए लोगों को कौन यमदूत नजर आ रहा है, कैसी वैचित्री, कितना बड़ा अंतर है। इससे पता चलता है कौन मार्ग पर चलने का यत्न कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अरे भैया 24 घंटे में 24 घंटे नहीं जाग सकते, तो कम से कम शुरुआत के योगी तो बनो। बोले वो कैसे बनते, बोले पहले पहरे सब कोई जागे, रात्रि जब संसार की रात की बात हो रही है, अभी विषयों वाली बात नहीं हो रही है, संसार में जिसमें सोना जागना आंखों वाला, उसमें बोले पहले पहरे सब कोई जागे, नियम है ये संसार का, जिसमें रात्रि जो 4 प्रहर की होती है उसमें पहले प्रहर में सब जागते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, मतलब 8-9 बजे तक प्राय संसार में सब जागते हुए पाए जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा। बोले दूसरे पहरे भोगी 9 बजे से जो 12 बजे तक का प्रहर है उसमें अगर कोई जाग रहा है तो कौन जागेगा, भोगी। अब वो आराम से 9 बजे सब बच्चे बच्चे सो जाएंगे, छोटे बड़े या बड़े बूढ़े सो जाएंगे, तब आराम से टीवी चलाएगा, अब थोड़ा 9 से 12 मूवी देखते हैं या फिर मोबाइल में यूट्यूब देखेगा या फिर अपने पुराने पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये फ्रेंड बॉय ये वो फ्रेंड, फिर तो उनके व्हाट्सएप चेक करेगा 9 से 12। प्रैक्टिकल बात है कि नहीं। दूसरे प्रहरे भोगी, याद रखो इस बात को, अगर आप 9 से 12 जाग रहे हो तो उस समय में अगर भजन की क्रिया में नहीं लगे हो तो स्वाभाविक रूप से जागने पर आपके अंदर भोग वृत्ति ही जागृत होगी, क्योंकि वो भोगियों का ही समय है। अगर आप 24 घंटे में 24 घंटे जागने की सामर्थ्य रखते हो और सच्चे योगी हो, 24 घंटे में ये तो सच्चे योगियों की क्रिया चली रही है, अभी यहाँ घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं, इसको तो रात दिन कथा को कंटिन्यू किया जा सकता है। बोले दूसरे प्रहरे भोगी तीसरे प्रहरे तस्कर जागे, 9 से 12 तक भोगियों की इस बात को ध्यान में रखते हुए तस्कर माने चोर उचके डकैत वो लोग 9 से 12 तक नहीं जाते और 9 से 12 तक भी अपनी नींद ले लेते, 12 बजे शार्प उठ जाते। मेरी एक बार सिस्टर का फोन आया, बोले हमारा पड़ोसी एक व्यक्ति है, बोले उसकी खूब धुनाई की लोगों ने, बोले क्यों, बोले वो भूसा चुराता था। तो जो व्यक्ति था जिसका भूसा रखा हुआ था खेत में से वो जा करके कठरी बांध के ले आता था, तो उसने सोचा कौन चुराता है कौन चुराता है पता ही नहीं चलता। एक दिन वो पहरा देने लग गया तो ठीक रात को 2:30 बजे वो गठरी भर के लेके जाने लग गया, उसको वही पेड़ से बांधा और दे धुनाई की उसकी। तो उसकी नींद इतनी परफेक्ट हो गई थी, ठीक वो 2 बजे 1:30 बजे उठ जाता था, गठरी लेके जाता था और एवरी डे चुरा के लाता था। कौन जाग रहा है इतने बजे? तस्कर। तीसरे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे जोगी। 12 से 3 तक तस्करों का और चौथा पहर 3 बजे से चालू हो गया, 3:30, 3:30, 3:30। बोले अब ये प्रहर किसका है? योगी का है। अब आपका समय आ गया भैया, जाग तो जाओ, चलना तो दूर की बात है, लक्षण क्या होंगे आने वाले समय में भक्ति को पता चले। अब हम अपनी ओर झांक करके देखें कि हम भक्ति मार्ग पर चलने वाले पथिक में से उनसे पथिक हैं, भोगी हैं या तस्कर हैं या योगी है। योगी छोड़ के सब है, कुछ लोग तो सब में हाँ, ये हमारी वृत्ति है। इसलिए सबसे पहला लक्षण जागना, ये अत्यंत आवश्यक है। जो लोग योग का मार्ग ही यहां से चालू होता है, जिसमें कि जीव को ब्रह्म मुहूर्त में हर हालत में उठना होगा, अगर नहीं उठ सकता तो अभी तो उसका मार्ग चालू ही नहीं हुआ। बाकी समय में अगर कोई भजन करता है तो क्या भजन नहीं माना जाएगा? बाकी समय के भजन का प्रभाव ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें उसको रुचि आने लगे, जीवन भर उसको बोझा ही फील होगा। लेकिन ब्रह्म को अगर पाना है आपने तो उसके लिए निर्धारित मुहूर्त है, कोई भी काम करने के लिए मुहूर्त देखा जाता है, ब्रह्म को पाने के लिए पहले से ही निर्धारित मुहूर्त है, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आप किसी भी हालत में इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं अगर आपने सोच लिया मैं नहीं कर सकता तो आप चल ही नहीं सकते। इससे अच्छा फिर अच्छा भोगी बन जाना चाहिए या तस्कर बन जाना चाहिए। उससे क्या है कि फिर संसार में हम जल्दी से बुरे कर्मों का परिणाम फिर भोगने के लिए जल्दी नरक में चले जाएंगे, फिर वहां यमदूत हमारी सफाई करेंगे। अगर सुबह के भजन से हम सब अपने आप की शुद्धि नहीं कर सकते फिर यमदूत हमारी शुद्धि कर, आवश्यक है कोई ना कोई रास्ता अपनाना। तो जो गोस्वामी हैं ये कैसे हैं? निरंतर भजन में लगे रहने वाले, ये ऐसे योगी नहीं है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे हैं, ये निरंतर उठे रहते हैं। कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम भो निधि, और यही दूसरों को भी देते, उनको पारस मनी, उनकी सेटिस्फेक्शन को देख करके उस व्यक्ति ने पूछा आपके पास ऐसा लगता है कि इससे भी कुछ विशेष है, ऐसा लगता है। इसलिए जो व्यक्ति ये इनके इन प्रकार इस मार्ग में अगर बिस्तर छोड़ देता है, अब इसमें चुटकी से नहीं काम होते, इसमें टाइम लग जाता है, अकेले में छोड़ना ही बहुत कठिन हो जाता है, भक्तों की संगति मिले तब जाकर के भले छूटे बिस्तर, अन्यथा बिस्तर छूटता ही, सबसे पहले बिस्तर छूटना चालू होता है तब जाकर के दूसरे लक्षण प्रकाशित होंगे, और जब दूसरे लक्षण होंगे तब कह पाएंगे कि हम भक्ति मार्ग में कितने चले, कितना बाकी है और किस तीव्रता से अपने को चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग इस चीज को तो बहुत ऐसे सोचते हैं, फॉर ग्रांटेड, हाँ हम ऐसे ही रहेंगे और आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, प्रमाणित भी करेंगे। इसको कहते हैं जैसे क्लास में ही बैठे बैठे भी कहेंगे हाँ हम तो भोगी हैं, लेकिन संसार में नहीं रहेंगे, हम योगियों के साथ रहेंगे, रहेंगे भोगी। क्लास में बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ भुन 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 चलता रहे। इसको कहते हैं आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, पंचों का फैसला सरमत थे, ठीक कह रहे, लेकिन साड़ा परनाला उत्थे का उत्थे, पनारा वहीं रहेगा। इसलिए 99.99% आपके सेंटेंस पूरा होने से पहले कुछ लोग सेंटेंस पूरा कर दें, आप कहोगे 99 वो 0.99% वो पूरा करेंगे आपके पहले ही, लेकिन वो आएंगे उसी कैटेगरी में। प्रायः लोग इन बातों को जीवन में नहीं उतार पाते, संघर्ष है, लेकिन एक इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, इसको कहते वेयर देयर इज विल देयर इज वे। लेकिन जो सफाई पे सफाई देना चालू कर देता है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे को छींक आ गई, मेरी आंख की पलक नहीं खुली, जैसे वो पलक के अधीन वो है, उसके अधीन पलक नहीं है, मेरी आंख नहीं खुली, रसगुल्ले के सामने कैसे खुल गई थी आंख, रात भर मोबाइल में अलग अलग चीजें देखने के लिए कैसे आंख खुली थी, तब तो आंखें बंद भी हो रही तो भी फाड़ फाड़ के खोल रहे हैं उनको, नहीं नहीं पूरा ये देख लेते, ये देख लेते, ये देख लेते, तब आंखें कैसे खुल रही थी। इसलिए ऐसे ऐसे बहाने आपको बहुत सारे तो ऐसे यूनिक बहाने मिले, बोले कान में दर्द है, आप फुंसी भी नहीं ढूंढ सकते कहां पर है वो फुंसी, कान में अंधेरा इतना छाया रहता है, अंदर इतना आड़ा टेढ़ा है रास्ता उसका, कान में दर्द। यहाँ किसी भक्त को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, प्रायः एक लोगों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। और कुछ लोग एकदम सुबह उठते एकदम ऐसा चेहरा दिखाएंगे, मर गए घर में 8-10 लोग, इसलिए बोले सुबह में आए नहीं, शोक में सो रहे थे इसलिए सुबह उठ नहीं पाए। तो भाई भगवान को पाना कोई खेल थोड़ी है, आपको पारस मनी जो दे रहे हैं ऐसे ही थोड़ी मिल रही है, पारस मनी कचरा कैसे बन रहा है, जब आप रात दिन लगे हुए हो। बहुत सारे लोग बेरोजगारी बेरोजगारी, हमारा पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा है, एक आचार्य कह रहे हैं तुम यार बैठे मत रहो फालतू में, आपको कोई काम नहीं, किसी का जबरदस्ती काम करने लग जाओ, आपका पेट कभी खाली नहीं रहेगा, भूखे नहीं मरोगे, सब चीजें ऐसे, कुछ तो करो। लेकिन हम भक्ति मार्ग में आकर के खाली खाना सोना खाना सोना खाना सोना, सेप्टिक टैंक को भरना बस। फिर तो प्रभुपाद जी भी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के नियमों के खिलाफ है ना वो। इसलिए संसार में कहीं किसी की जी हजूरी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, यदि हम ईमानदारी से प्रभुपाद जी के सच्चे अनुयायी होकर के, इन गोस्वामियों के सच्चे अनुयायी होकर के भजन करने लग जाए, एटलीस्ट सुबह में उठ करके भजन करने लग जाए। बड़ा सशक्त भजन है जो इन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया, इसलिए हमने इनकी लाइनें गाया। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम भो निधि, कृष्ण कीर्तन नर्तन परो प्रेमामृतम भो निधि। धीर अधीर, देखो इसको कहते अजात शत्रु, जो अधीर लोग हैं उनको भी प्रेम कर रहे, धीर लोग हैं उनको भी अपना प्रिय मान रहे, सब इनके अपने प्रिय बन करके चल रहे। धीरा धीर जनो प्रिय प्रिय करो निर्मात सरो पूजितो। धीरा धीर जनो प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। जो निर्मत्सर हैं, जो ईर्ष्या रहित हैं, वो लोग इनकी पूजा में लगे रहते हैं। जो अधीर है वो तो इनको समझ ही नहीं पाएगा। जो निर्मत्सर है, जो ईर्ष्या रहित है, वो रात दिन इनकी पूजा करते हैं। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो। देखो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा इन्होंने क्या किया, भार वहन तार को, जो भूमि माने भूमि का जो भार है उसको इन्होंने उतार दिया। हम सब धरती के बोझ बनकर के पापी लोग संसार में सिर्फ कलह फैलाने में लगे रहते। इन्होंने ऐसे धरती के बोझों को भक्त बना दिया और धरती के बोझ को हल्का कर दिया। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवे भुवो भारा वहन तार को। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवे भुवो भारा वहन तार को। वंदे रूप सनातन रघु युगो श्री जीव गोपाल को। वंदे सनातन रघु युगो श्री जीव गोपाल को। ये रूप सनातन रघु युगो और श्री जीव और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये छह गोस्वामियों का ऐसा ही अद्भुत महिमा है। इनके एक एक चरित्र को थोड़ा सा और भी आगे वर्णन करेंगे तो सनातन गोस्वामी के हम आभारी हैं, इनके चरणों में ऋणी हैं कि इनकी दया से आज हमें प्रभुपाद जी जैसे संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हो पाया और हम अपने जीवन को चाहें तो सार्थक कर सकते हैं। आज कर सकते हैं, कल नहीं कर पाएंगे। दिन पर दिन हम शक्तिहीन होते चले। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। समय हो गया है, कल थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो भी